Good evening and loving greetings to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. In fact, before coming here, I felt that most of the participants will be unfamiliar to me, but after coming here, I feel at home.
और मैं सोच रहा था कि जब मैं आने वाला था मैंने सोचा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग को मैं शायद नहीं जानता हूँगा लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में वापस आया हूँ.
Some way or other, almost all of you are familiar to me.
और कहीं ना कहीं तरह से मैं जब सोचता हूँ आप लोग सभी एक प्रकार से मैं आपसे परिचित हूँ.
And it's another surprise that I met Brother Noah after almost 30 years.
और ये एक और बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं जो हूँ भाई नोहा से तकरीबन 30 साल के बाद मुझे मिलने का अवसर मिला है.
These days, as it has been introduced, we'll be meditating upon one of the most important and relevant subject that is the church.
और इन दिनों में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है जो कि कलीसिया है उसके बारे में हम मनन करेंगे विचार करेंगे.
I know that all of us are familiar with many of the teachings of church.
और मैं ऐसा मानता हूँ विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक जन ये जो कलीसिया के संदर्भ संबंध में जो शिक्षा है उससे परिचित हैं.
Still then I feel that this is a most relevant subject for God's people during these days.
लेकिन इन दिनों में मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही ऐसा विषय है जिसका हमें जानना बहुत ही जरूरी है.
I am here not to preach.
मैं कोई उपदेश देने या संदेश देने नहीं आया हूँ.
Though I know a little bit of preaching.
हाँ मुझे संदेश देना या प्रीचिंग करना आता है.
बट आई विल गो वेरी स्लो सो दैट ऑल ऑफ यू कैन टेक डाउन नोट्स.
और मैं चाहता हूँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही धीमे और धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आप सभी लोग जो है नोट्स भी ले सकें.
एंड इफ देयर इज एनी डाउट काइंडली रेज योर हैंड सो दैट वी विल डिस्कस इट अगेन एंड अगेन.
अगर आपके मन में कोई शंका है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाइए उसके जिसके कारण हम जो है इसको बार बार फिर से हम दोहरा सकें.
Now the first lesson, church and churches.
और
church and churches.
पहला जो शिक्षा है जो मैं देना चाहता हूँ वो है कलीसिया के संदर्भ में church and churches.
In its singular and plural usage.
और एक वचन और बहुवचन के तौर पर अगर हम सोचे.
We know in the first century, the attack of Satan was mostly against the person and work of Christ.
और हमें मालूम है कि पहली शताब्दी में शैतान का जो आक्रमण था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था.
Satan tried every means and way to declare to the world that Jesus is not a savior at all.
और शैतान ने पूरी तरह से कोशिश करी ये बताने के लिए लोग को संसार के लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धारकर्ता नहीं है.
So much of dispute went on against the person of Christ and his work.
और प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व और उसका जो कार्य है उसके ऊपर जो है बहुत सारा विचार विमर्श और बहुत सारे विवाद जो है शैतान ने खड़े किए.
Few doubted whether he was God and others doubted whether he was truly man.
और कई लोगों ने इस प्रकार से उनके मन में शंका पैदा की गई कि क्या वो सचमुच एक मनुष्य था या फिर क्या सचमुच वो परमेश्वर था.
And others doubted how these two natures can be found in one person.
और कई लोग ऐसा सोचते थे कि ये दोनों व्यक्तित्व जो है एक ही व्यक्ति में कैसे मौजूद रह सकते हैं.
And after the first and second centuries,
पहली और दूसरी शताब्दी के बाद
the great dispute was against the Trinity.
और उसके बाद जो सबसे बड़ा विवाद जो था वो त्रियेकता के ऊपर था.
How Father, Son and Holy Spirit can be in the same Godhead.
और किस प्रकार से पिता पुत्र और एक पवित्र आत्मा जो है एक ही व्यक्ति के अंदर एक ही व्यक्तित्व है.
Three persons in one Godhead.
और तीन व्यक्तित्व जो है एक परमेश्वरत्व में.
So much of dispute went against it.
और इसके खिलाफ भी बहुत सारा जो है विवाद जो है वो खड़ा हुआ.
Years and centuries went by.
और सालों निकल गए शताब्दियां बीत गई.
And during the middle ages.
और बीच के अंतराल में बीच के काल में.
Almost during the time of reformation.
और जो reformation का जो समय आया.
The dispute was against salvation and justification.
और उस वक्त जो विवाद फिर से खड़ा हुआ वो था उद्धार और justification के बारे में.
The nominal churches they dominated Christian world.
और नामधारी मसीह लोगों ने इस प्रकार से सारे संसार के ऊपर या मसीह जगत पर उनका बहुत बड़ा दबदबा था.
So teaching was greatly advocating for do certain things and get saved.
और उन लोगों का मानना था कि कुछ काम करो या कुछ ऐसे कर्म करो और उसके बाद उसी से उद्धार है.
Satan got victory in it.
और इस बात में शैतान काफी हद तक उसको विजय हासिल हुई.
अगेन सेंचुरी वेंट बाय,
उसके बाद भी शताब्दियां बीत गई.
ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी,
19वीं शताब्दी में
द ग्रेट डिस्प्यूट वॉज अगेंस्ट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट.
और उस वक्त जो विवाद था वो ये था कि जो पवित्र आत्मा है उसके कार्य के ऊपर.
डिबेट वेंट अगेन अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स,
और फिर से विवाद जो था वो आत्मिक वरदान जो है उसके ऊपर विवाद हुआ.
Now again, centuries went by.
उसके बाद भी शताब्दियां बीत गई.
During this 20 and 21st centuries,
ये 20 और 21वीं शताब्दी में
the main subject of debate is about church.
और अभी जो विवाद जो है इस वक्त जो है वो विषय ये है कलीसिया का के ऊपर जो विवाद है.
So much of erroneous teachings, wrong teachings are prevailing in Christendom.
और हम देखते हैं कि आज के इस युग में जो है मसीह जगत में इस विषय के ऊपर जो है बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो है आज मौजूद हैं.
I am sorry to say that so much of wrong conceptions about church is prevailing even in our circle.
और हमारे बीच में भी हमारे अंदर भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कलीसिया के बारे में जो है हमारा जो सोच है वो विचार जो है उसके बारे में कई त्रुटियां जो है हमें देखने को मिलती हैं.
The scripture gives so much of importance to the local assembly.
और पवित्र शास्त्र जो है बहुत ही ज्यादा जोर जो है स्थानिक मंडली के ऊपर देता है.
Whereas our people are not giving that much of importance to local assembly.
लेकिन हमारे लोग जो है किसी वजह से जो है बहुत ज्यादा जवाब बहुत ज्यादा महत्व जो है स्थानिक मंडली को या कलीसिया को नहीं दे रहे हैं.
द टेम्पटेशन इज टू गो आफ्टर द अदर चर्चेस.
और हमेशा एक प्रकार का आकर्षण है कि दूसरी कलीसिया की ओर जो है हमारे लोग जो है खींचे जाते हैं.
दे हैव दिस एंड दैट, दे डू दिस एंड दैट, दिस देन व्हाई कांट वी.
और वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, हम क्यों ऐसा नहीं करते.
एंड स्लोली we deviate from the original teaching of the scriptures.
और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं से हम जो है दूर चले जा रहे हैं.
And I firmly believe that these are the days when we have to come back to the scriptures.
और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे दिन है कि हमें फिर से वापस पवित्र शास्त्र की ओर मुड़ कर आना चाहिए.
How much of significance is given to the church by the Lord and the word, we have to come back to it.
हमें ये देखना है कि कितना ज्यादा महत्व जो है प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है इसके बारे में हमें सोचना है, फिर से वापस पवित्र शास्त्र की ओर आना है.
That's why I said at the beginning, this is one of the most relevant subjects.
और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है.
Now we will read one verse, 1 Timothy chapter 3 and verse 15.
और अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी तीसरा अध्याय और उसका 15 वचन.
1 Timothy chapter 3 and verse 15. Paul says to young Timothy.
अपोस्तल पॉल जो है नौजवान तिमोथी से कह रहा है.
और अभी मैं kindly read.
आप में से कोई पढ़ सकता है?
We know who was Timothy.
हमें मालूम है कि Timothy कौन था?
A young man.
एक नौजवान व्यक्ति था.
An ardent disciple of Apostle Paul.
अपोस्तल पॉल का एक बहुत बड़ा एक प्रिय एक शिष्य था.
We know who was Paul.
अपोस्तल पॉल ने उसे बहुत प्रेम किया था.
He was a man who received so much of revelation about church.
और कलीसिया के बारे में अपोस्तल पॉल ने बहुत सारा खुलासा जो है अपोस्तल पॉल को मिला था, प्रकाशन मिला था.
So much of mysteries about church was written by Apostle Paul.
Apostle Paul ने कलीसिया के बारे में बहुत सारा रहस्य जो था उसका खुलासा किया और उसको लिखा था.
So Paul must have informed everything about church to Timothy then and there.
और हमें मैं विश्वास करता हूँ कि Apostle Paul ने ये सारे रहस्य कलीसिया के जो भी रहस्य थे वो सारे रहस्य जो है मैं मानता हूँ विश्वास करता हूँ कि Timothy को बताए होंगे.
Timothy is trained well.
और Timothy ने अच्छा प्रशिक्षण लिया.
He is sent as a delegate for Paul for many times.
और कई बार अपोस्तल पॉल की ओर से भेजा गया एक दूत के रूप में तिमोथी ने काम किया.
Now Paul is coming almost to the close of his days.
और अपोस्तल पॉल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो आ रहा है.
The man who was trained well,
और जिस व्यक्ति ने अच्छा प्रशिक्षण लिया है,
still he is given instruction.
लेकिन उसके बावजूद भी उसे कई प्रकार के निर्देश दिए गए.
About what?
किस बारे में?
About church.
कलीसिया के बारे में.
You must know how you ought to conduct in the local assembly.
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें स्थानिक मंडली में किस प्रकार से तुम्हें व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए.
Does it mean that Timothy did not know it?
इसका मतलब यह है क्या Timothy को ये सारी बातें मालूम नहीं थी?
Did he?
ऐसा था क्या?
Was he a beginner?
क्या वो इस प्रकार से शुरुआत का एक विश्वासी था?
No, he was not a beginner of the things of God.
और परमेश्वर के कार्य में उसने कोई नई शुरुआत या शुरुआत में शुरुआत का काम नहीं था उसका.
He was well trained and well versed with the scriptures.
लेकिन वो जो ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही प्रशिक्षित था और उसे परमेश्वर के वचन का अच्छी तरह से ज्ञान था.
He was involved in the founding of local churches.
और उसने इस प्रकार से स्थानिक मंडली की स्थापना में बहुत सारा काम किया था.
Still then Paul says that you must know how to conduct in the church.
लेकिन उसके बावजूद भी अपोस्टल पॉल कहता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए किस प्रकार से मंडली में व्यवहार करना है.
If Timothy, being such a man, was to be informed about the conduct of a believer in the church, how much more we need to know.
अगर तिमोथी की अवस्था ये है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अपोस्टल पॉल ने उसे निर्देश दिया है कि तुम्हें किस प्रकार से बर्ताव करना ये जानना है, तो हमारे बारे में हमें क्या कहना चाहिए, कितना हमें इस बारे में सोचना चाहिए.
Now these are the days when people feel that they can conduct the local church as they like.
और आज का ऐसा युग है कि लोग सोचते हैं कि जो स्थानिक मंडली है उसका नियंत्रण या उसकी उसको किसी भी प्रकार से चलाया जा सकता है.
Not at all. We are not permitted to work as we like. We are not allowed to conduct as we like in the church.
और हमें इस प्रकार से इजाजत नहीं दी गई कि जिस प्रकार से हम सोचे उसी प्रकार से कलीसिया को चलाएं.
There are strict rules and regulations.
और इस कलीसिया को चलाने के लिए बहुत सख्त नियम और कानून है.
Now where do we find the rules and regulations?
ये कानून और ये नियम हमें कहाँ मिलते हैं?
Now long back, during the time of Ezekiel.
Ezekiel के समय बहुत काल पहले.
God took Ezekiel in a vision to the top of a mountain.
और परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और परमेश्वर ने Ezekiel को एक पर्वत के पहाड़ के ऊपर ले गया.
And asked Ezekiel to see what I do.
और Ezekiel से कहा कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ.
The man who appeared unto him, he was holding a long rod and a thread in his hands.
और हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति जिसके उसके सामने आता है उसके हाथ में एक लंबी छड़ी रहती है.
It was almost 10 feet long.
और वो 10 फीट लंबा था.
And a long thread.
और उसके हाथ में बहुत लंबा धागा था.
What for?
किसके लिए?
Why this rod and thread?
और ये जो छड़ी है और ये जो धागा था वो क्यों था?
It was to measure the temple. It was to measure the temple.
और ये जो मंदिर था उसको नापने के लिए था.
Measure the courtyard.
और जो मंदिर का जो आंगन है उसको नापने के लिए.
Measure the holy place.
और जो पवित्र स्थान है उसको नापने के लिए.
Measure the most holy place.
और जो अति पवित्र स्थान है उसको नापने के लिए.
In chapter 42 of Ezekiel we read about it.
और 42वें अध्याय Ezekiel के 42 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
And in chapter 43.
और 43वें अध्याय में भी.
Now it's interesting to see that picture.
और बहुत ही अद्भुत बहुत ही दिलचस्प बात है जब वो पिक्चर जो चित्र को हम जब देखते हैं.
The Lord asked Ezekiel.
परमेश्वर ने Ezekiel से कहा.
You see what I do.
और तुम देखो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ.
See how I measure the temple and temple area.
और देखो कि मैं किस प्रकार से मंदिर और मंदिर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको मैं कैसे नापने जा रहा हूँ.
Now after seeing the measurement.
और इस नापने को जब तुम देखोगे मैं किस प्रकार से नापता हूँ.
After keenly observing how do I measure.
और जिस प्रकार से मैं नाप रहा हूँ उसको बहुत ही बारीकी से तुम देखो.
Now you write them down.
और तुम
you write them down.
और उसे तुम लिखो.
And give to people.
और लोगों को बताओ दो.
Let them see what the temple is all about.
और लोगों को जानना चाहिए कि यह मंदिर आखिर क्या है.
Let people come to know that how much significance I give to the temple.
और लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि मैं मंदिर को कितना महत्व देता हूँ.
I measure every area.
और उसके प्रत्येक क्षेत्र को तुम नापो.
I don't leave any place in the temple.
और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ.
Because the temple is so precious to me.
क्योंकि ये जो मंदिर है मेरे लिए बहुत ही बहुमूल अनमोल है.
So you see how I measure it.
और तुम देखो कि मैं इसे कैसे नापता हूँ.
Write them down.
और उसे लिखो.
Give to people.
लोगों को दो.
Let them read it.
और लोग उसे पढ़ें.
Let them understand it.
लोग उसे समझें.
And so that they may love the temple.
ताकि ये ताकि लोग जो है इस मंदिर से प्रेम करें.
We know that was a shadow.
हमें मालूम है कि वो मात्र एक छाया थी.
And today we are in the temple of God.
आज हम जो है परमेश्वर के मंदिर में हैं.
We are in the church of God.
हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं.
And now where is that yardstick and thread?
और आज जो है ये नापने का वो मापदंड कहाँ पर है?
That stick, yardstick to measure small areas and thread to measure the large areas.
और जो लाठी थी वो छोटे क्षेत्रों को नापने के लिए और जो धागा था वो बड़े क्षेत्रों को नापने के लिए था.
What is that yardstick for us?
वो मापदंड आज हमारे लिए क्या है?
We have the word of God as a yardstick in our hands.
हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है वो नापने के लिए एक मापदंड हमें दिया गया है.
Before conducting in the church, before working in the church.
और कलीसिया में काम करने या कलीसिया में बर्ताव करने से पहले.
Every believer has got the responsibility to check it down.
और हर विश्वासी की ये जवाबदारी है कि उसे वो अच्छी तरीके से बारीकी से देखे.
The measuring rod is here.
और ये जो नापने का या तौलने का जो छड़ी है वो हमारे पास है.
Is my behavior, my attitude, my way of talk go in accordance with this yardstick.
और क्या मेरा स्वभाव है, मेरा बोलने का तरीका है, मेरा जो तौर तरीका है वो इसके अंदर, इस किताब के अंदर, बाइबल के अंदर जो दिया गया मापदंड है उसके अनुरूप है?
It is there in the Bible.
और ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई
है. So the need of the hour for us is to go back to that yardstick.
और इसीलिए हमारे समय हमारे लिए जरूरी है कि हम फिर से एक बार फिर से मुड़कर उस मापदंड को अपनाने की कोशिश करें.
Now as I said earlier, so much of confusion is going around.
और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारा विवाद और बहुत सारा असमंजस में लोग जो है आज पड़े हुए हैं.
The only reason is that people do not go and find the yardstick.
और इसका कारण यही है कि लोग जो है जाते नहीं है और जो मापदंड है उसको उसके उसको जानने की कोशिश नहीं करते.
Now how one ought to behave or conduct in the church of God.
और जाना जरूरी है कि हमें एक व्यक्ति को किस प्रकार से कलीसिया में उसका बर्ताव होना चाहिए, करना चाहिए.
Now I want to divide that verse into two.
मैं इस वचन को दो भागों में उसका विभाजन करना चाहता हूँ.
How one ought to behave in the church of God.
किस प्रकार से एक व्यक्ति को परमेश्वर की कलीसिया में उसका बर्ताव होना चाहिए.
So before behaving or conducting the church, one has to know what is the church.
और इससे पहले बर्ताव करने से पहले जरूरी है उस व्यक्ति को जानना कि कलीसिया आखिर क्या है.
Before finding the rules and regulations of how we ought to conduct the church, we have to find what is a church.
और हमें पहले जानना जरूरी है कि कलीसिया क्या है, इससे पहले कि उसके अंदर उसको चलाने के लिए नियम और कानून क्या है.
So what is church and how to conduct in the church?
क्या कलीसिया क्या है और कलीसिया को कैसे चलाना है?
You are following me?
आप समझ रहे हैं?
You are with me?
क्या आप मेरे साथ हैं?
Look as if you are very tired, indifferent.
आप ऐसे दिख रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं.
Okay. First of all, what is church?
पहली बात यह है कि कलीसिया क्या है.
Now before explaining what is church, I have to say what is not. Church is not.
और मुझे पहले ये बताने की कलीसिया क्या है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कलीसिया क्या नहीं है.
Now in a Christian world, so much of erroneous teachings are prevailing about church.
और हम देखते हैं कि आज मसीह जगत में बहुत सारी कलीसिया के बारे में झूठी शिक्षाएं जो है बहुत प्रचलित है, मौजूद है.
So I want to explain maybe three or four wrong conceptions, wrong teachings about church that we find around us.
और इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो या तीन या तीन या चार ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही झूठी या गलत शिक्षाएं जो आज मसीह जगत में जो मौजूद हैं.
Now for many of people, many of the Christians, they think that church is something like a building.
और कई लोग इस प्रकार से मसीह लोग मानते हैं कि जो कलीसिया है वो एक इमारत है.
The name is placed before a building.
और हम देखते हैं इमारत के सामने या इसके ऊपर जो है उसका नाम लिखा रहता है.
Now people see from Sunday to Saturday,
लोग देखते हैं शनिवार से लेकर रविवार तक,
this is so and so church.
ये फलाना फलाना चर्च है, कलीसिया है.
So for them, a building that is assigned for the things of God, for religious activity, Christian activity, that is a church.
और उन लोगों के लिए इस प्रकार से एक कलीसिया जो है उसके अंदर एक धार्मिक गतिविधियां होती है, उनके लिए वो एक कलीसिया है, ये चर्च है.
So that church is compared with a building.
और हम देखते हैं कि कलीसिया की जो तुलना है वो इमारत से होनी चाहिए, ये सही है.
That is one of the metaphors used for church.
और उसके लिए जो उपमा जो है कलीसिया के लिए एक उपमा जो है इमारत के रूप में हम देखते हैं.
But church is not a building.
लेकिन कलीसिया जो है एक इमारत नहीं है.
Concerning the work and progress and development of church, the Lord and Apostle Paul, they have made this metaphor to explain what church is.
और इस प्रकार से इमारत को, इस प्रकार से अपोस्टल पॉल और प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाने के लिए इस उपमा इमारत का इस्तेमाल किया है.
But church is not at all a building.
लेकिन कलीसिया जो है एक इमारत नहीं है.
Now there are two words used in Bible in New Testament.
और नए नियम में दो वचनों का इस्तेमाल किया गया है.
For temple and for the gathering of God's people.
और मंदिर और लोग, परमेश्वर के लोग जो एकत्रित होते हैं उनके बारे में.
Now the Old Testament, during the Old Testament time, the temple and the whole structure of it.
और हम देखते हैं पुराने नियम में जो मंदिर था और उसकी पूरी जो इमारत थी,
that is a big building.
वो एक बहुत बड़ी इमारत थी.
And the word used in the New Testament for that building is Hieron, H-E-I-R-O-N.
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस इमारत को जो शब्द यूज किया गया है, हीरोन.
Hieron, that is a building.
और उसका मतलब है इमारत.
But when it comes to the New Testament church,
लेकिन जब वो नए नियम के कलीसिया के उस के संदर्भ में जब लेते हैं,
the word Hieron is not used, but the word Naos is used.
Hieron का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि Naos का शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
I want to make a distinction between this.
मैं इन दोनों में एक फर्क बतलाना चाहता हूँ.
The first word is Hieron.
पहला शब्द जो है
हेरोन है.
Now this is a whole structure.
और हेरोन का मतलब है कि संपूर्ण जो इमारत है.
Whereas this is the holy area where priest minister.
और नाउस जो है एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पर जो याजक लोग थे वो इस प्रकार से आत्मिक कार्यवाही करते थे.
Now what is church? It is not a building.
तो कलीसिया क्या है? वो एक इमारत नहीं है.
The temple was a big complex.
और वो जो मंदिर था एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा क्षेत्र था.
It had different areas.
और उसमें बहुत अलग अलग तरह के क्षेत्र थे.
Whereas there was a particular place dedicated for the service of God.
और लेकिन वहां पर एक ऐसा खास स्थान था जो कि इस प्रकार से परमेश्वर के कामों के लिए अलग करके रखा था.
That's a holy place.
और वो स्थान था पवित्र स्थान.
It was there priest minister unto God.
और वहां पर जो थे याजक लोग जो है वो परमेश्वर की कार्य करते थे.
So the word Naos, the holy place of God, that is filled with the work of priests.
और वो नाओस जो कि पवित्र स्थान था वो ऐसा स्थान था जहां पर याजक लोग हमेशा अक्सर पाए जाते थे.
Now what I mean is that if priests are not there,
मेरा कहने का मतलब है अगर वहां पर याजक लोग नहीं है,
there is no Naos at all.
तो इसका मतलब है वहां कोई नाओस नहीं है.
The Heron is there.
Heron is there.
The building is there.
और इमारत है.
But if priests are not there and their work is not carried out,
अगर याजक लोग नहीं है और जो काम है वो नहीं हो रहा है,
then the temple become meaningless.
तो जो मंदिर है वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है.
If priests are absent, there is no Naos at all.
अगर याजक लोग वहां पर मौजूद नहीं है तो वहां नाओस है ही नहीं.
Now relate it with the present day church.
आज की जो कलीसिया का युग है उससे हम जरा उसका संबंध जोड़ने की कोशिश करें.
What is church?
कलीसिया क्या है?
It's not a building.
वो एक इमारत नहीं है.
पीपल में गैदर इन ए बिल्डिंग.
और लोग जो है एक इमारत में एकत्रित हो सकते हैं.
बट दैट बिल्डिंग डस नॉट मेक ए चर्च.
लेकिन वो इमारत जो है कलीसिया नहीं बनाती.
इट्स अ गैदरिंग ऑफ होली प्रीस्ट्स एंड पीपल.
और वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र लोगों का एकत्रित होने का वो एक स्थान है.
एंड इट इज दैट मेक्स ए चर्च.
और इसके कारण ही हम देखते हैं उसे कलीसिया कहा जाता है.
Now the word church, it is widely misunderstood by people.
और लोग जो है कलीसिया को जो शब्द है उसको बहुत ही गलत तरीके से उनकी समझ है.
And many Bible scholars feel that church and got victory by using the word church for ecclesia.
और हम देखते हैं कि कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि
ecclesia church. Satan got victory in misleading people by using the word church.
और शैतान को इस प्रकार से विजय मिली क्योंकि उसने लोगों को भरमाया और इस प्रकार से चर्च का नाम का स्थापना हुई और लोग चर्च पर विश्वास करने लगे.
Now the word church comes from a Scottish word kirk.
और चर्च जो है एक स्कॉटिश वर्ड जो है शब्द जो है kirk से आया.
From which comes the Greek word kuriakos and kuriakon.
और उसी इसी शब्द से ग्रीक का शब्द आया कुरियाकोस और कुरियाकोन.
From which comes the English word church.
और उधर से हम देखते हैं इंग्लिश शब्द आया चर्च.
Now when we say church in the present day,
आज के युग में हम जब कहते हैं कलीसिया,
people don't get understand what the word really means.
और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये शब्द का सचमुच अर्थ क्या है.
Now the word kirk or kuriakon, that simply means that of the Lord, that which belongs to the Lord.
और kirk और kuriakos जो है उसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का है.
That which belongs to the Lord,
जो परमेश्वर का है.
It doesn't carry the whole meaning of ecclesia, assembly.
और ये पूरा कलीसिया का जो है संपूर्ण अर्थ जो है इसमें इसके अंदर समावेश नहीं है.
Now this word kuriakon is used twice in New Testament.
और नए नियम में कुरियाकोन का जो शब्द है दो बार इसका इस्तेमाल किया गया है.
That of the Lord, that which belongs to the Lord or Lords.
और जो परमेश्वर का है जो परमेश्वर का है इस प्रकार से.
Can you tell me one or two examples? There are two references only. Lords.
और दो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं परमेश्वर का.
Lords kuriakon, Lord's Supper.
प्रभु भोज.
1 Corinthians 11 and verse 20.
पहला कुरिन्थियन उसका 11वां अध्याय और उसका 20वां वचन.
Lord's Supper.
प्रभु का जो भोज है.
And Revelation 1:10, Lord's Day.
और प्रकाशित वाक पहला अध्याय उसका 10वां वचन परमेश्वर का दिन.
Yeah, Lord's Day.
प्रभु का दिन.
These are the two occurrences only where we find the word kuriakon.
और ये ऐसे दो ही संदर्भ है जहां पर हम देखते हैं जो शब्द कुरियाकोन का इस्तेमाल किया गया है.
That which belongs to the Lord.
जो परमेश्वर का है.
The supper belongs to the Lord, Lord's supper.
और प्रभु का जो भोज है वो प्रभु का है.
And a day belongs to the Lord, Lord's day.
और एक दिन जो कि प्रभु का है जो कि रविवार का दिन है.
Whereas
चर्च डस नॉट हैव एनी रिलेशन विद दिस.
और लेकिन हम देखते हैं कि कलीसिया का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है.
बट अनफॉर्चुनेटली किंग जेम्स इन ट्रांसलेटिंग बाइबल इन इंग्लिश ही कंपेल्ड द ट्रांसलेटर्स टू यूज चर्च.
लेकिन हम देखते हैं किंग जेम्स ने जब बाइबल का अनुवाद किया गया तो जो अनुवाद कर रहे हैं उनको उनके ऊपर जोर जबरदस्ती कर इस कलीसिया के शब्द का इस्तेमाल करवाया.
रियली दैट मिसलीड्स पीपल नाउडेज.
और इसके कारण बहुत लोग जो है बेराह हो रहे हैं.
When the board is written upon a building, church, they think that that building is church.
और जब एक इमारत के ऊपर एक बोर्ड लिखा गया है चर्च तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि ये एक चर्च है.
Whether there are people or not, that building is known as a church.
और उसके अंदर आदमी हो या न हो वो इमारत को चर्च के रूप में या कलीसिया के रूप में लोग मानते
हैं. How come that building is church?
और वो इमारत चर्च या कलीसिया कैसे हो सकती है?
When people are absent,
जब वहां पर लोग नहीं है,
it cannot be the church.
तो वो चर्च या कलीसिया नहीं हो सकता.
So the word ecclesia used for church in New Testament, it conveys the meaning of people of God who are called out.
और इसीलिए चर्च के बदले में ecclesia का इस्तेमाल नए नियम में किया गया है, ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है.
So this is the word used for church, not kirk but ecclesia.
लेकिन हम देखते हैं कि ecclesia का जो शब्द है वो kirk के बजाय जो है ecclesia का शब्द या शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
I think that all of us are familiar with the word ecclesia.
और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ecclesia का जो शब्द है उससे आप सभी लोग परिचित हैं.
That comes 114 times in New Testament, 114 times.
और नए नियम में 114 बार जो है इस शब्द को दोहराया गया है.
The word ecclesia means the group of people who are called out, the called out company.
और ecclesia का मतलब यह है कि ऐसे समूह के लोग जिन्हें परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया है.
Of course the church belongs to the Lord, no doubt about it.
और चर्च जो है परमेश्वर का है इसमें कोई शंका नहीं है.
But the whole idea about this ecclesia doesn't come by using the word church.
और चर्च का जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा ecclesia का जो विचार है उसमें हमें देखने को नहीं मिलता.
So church is ecclesia, the group of God's people.
तो चर्च का मतलब है ecclesia एक ऐसे समूह जो कि परमेश्वर के जन लोग हैं, प्रिय जन लोगों का समूह.
And not a building assigned for the things of God.
और एक ऐसी इमारत नहीं है जिसको परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए.
You follow me?
क्या आपको समझ में आया?
What is church not?
चर्च क्या नहीं है?
It's not a building.
वो एक इमारत नहीं है.
It's not a hieron. It's not a structure area. It's not a building. But it's a group of people nowos.
और वो हेरोन नहीं है कि इमारत नहीं है लेकिन एक इस प्रकार के लोग हैं, समूह के लोग हैं जो कि नाओस है.
It's a gathering of holy people.
और पवित्र लोगों का की जमावट है या पवित्र लोग वहाँ एकत्रित होते हैं.
It is a group of people who are called out from darkness, from Satan, to the light and to God himself.
और एक ऐसे लोग जो कि अंधकार में थे, जो कि शैतान की गिरफ्त में थे, उन लोगों को छुटकारा दिलाकर उन लोगों को अलग किया गया.
So that is why the reason why our people are mainly informed of using the word assembly or congregation rather than church.
और इसीलिए हमारे लोग जो है इस प्रकार से चर्च के बजाय जो है असेंबली शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.
There is nothing wrong in using the word church, but people get misunderstood very often by using the word church.
और चर्च का शब्द का इस्तेमाल करने में कोई गलती नहीं, लेकिन जब चर्च का शब्द का इस्तेमाल होता है तो लोग जो है कई बार जो है इसे गलत अर्थ निकाल सकते हैं.
So the better terminologies can be assembly or congregation.
और इसलिए इसके बदले में जो है असेंबली या congregation इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
That's why generally our assemblies are known as assemblies and not churches.
और इसलिए हमारी कलीसियाओं को हम असेंबलीज कहते हैं, चर्चेस नहीं कहते.
Even if somebody uses the word church, we cannot say that it is absolutely wrong.
और कई लोग इस प्रकार से अगर चर्च कहते हैं तो हम उनसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल गलत है.
But preferably the word assembly or congregation can be used for conveying the whole idea.
लेकिन इस प्रकार के पूरे विचार को प्रकट करने के लिए असेंबली के शब्द का इस्तेमाल करना ही उचित है.
So church is not a building, assembly is not a building, but a group of people who are called by the Lord.
और इसलिए चर्च जो है वो एक इमारत नहीं लेकिन एक ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है.
Okay? Clear? Then second.
दूसरी बात.
Many people think that church is a continuation of Israel.
और कई लोग सोचते हैं कि इसराइल की जो शुरुआत हुई थी वो आज भी चर्च के द्वारा जो है वो शुरुआत जो है वो जारी है.
God dealt with the people of Israel for many years, many centuries.
और परमेश्वर ने इसराइल के साथ वर्ताव किया, कई शताब्दियों तक परमेश्वर ने उनके साथ कार्य किया.
And people who want to continue the old systems in their services, they to think that the church is a continuation of Old Testament.
और कई लोग इस प्रकार से उस बात को सोचते हैं कि वो जो कुछ काम परमेश्वर ने किया था पुराने नियम में, वो जो कलीसिया जो चर्च है वो उसकी शुरुआत जो वहां हुई थी वो अभी भी जारी है.
Such ones want to continue the old priesthood And they say that church is a continuation of Old Testament.
और इस प्रकार से पुराने नियम में याजक लोग थे, इसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि उस कई लोग उस प्रकार को उन विधियों को मानते हैं.
But church is not the continuation of Old Testament, though the people of olden times they too believed in the Lord Jesus Christ, but they are a distinct group of people.
और हम देखते हैं कि इस प्रकार से कलीसिया जो है वो पुराने नियम के लोगों ने इस प्रकार से विश्वास किया, लेकिन उसके से बिल्कुल हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो बिल्कुल अलग है.
How do we know that church is not a continuation of Old Testament? Whereas this is a new entity.
और हम कैसे जान सकते हैं कि पुराने नियम की जो बातें थी वो आज नहीं है, लेकिन जो कलीसिया जो है एक नई शुरुआत है, एक बिल्कुल नई बात है.
How do we prove? If somebody says that, you know, we do these rites, we do this priesthood, we continue the old system because it's a continuation of Old Testament.
और कई लोग कहते हैं इस प्रकार से हम जो है पुराने नियम में जो बातें हैं, जो विधियां हैं, वही करते हैं क्योंकि ये पुरानी बातें हम इसको जारी रख रहे हैं.
Our priesthood originated from Aaron and we still continue it.
हमारे जो याजकपन है वो एरोन से शुरुआत हुई थी, जिसकी और आज भी हम उसको जारी रख रहे हैं.
हाउ आर वी गोइंग टू करेक्ट देम?
हम उनको कैसे सही कर सकते हैं?
कम ऑन, मैं हियर फ्रॉम यू,
मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं.
बिकॉज दैट्स द वे ऑफ माय टीचिंग. हाउ विल वी प्रूव दैट चर्च इज नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट?
हम कैसे साबित कर सकते हैं कि जो कलीसिया जो चर्च है वो जो है जो काम पुराने नियम में शुरुआत हुआ था वो आज भी निरंतर जारी है?
Okay, that's the first and foremost reason.
और पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे कलीसिया का निर्माण करूंगा.
Where do we read it?
कहां हम पढ़ते हैं?
मत्तयो 16:18. 18? मत्तयो, यू चेक इट.
मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं.
I'll come to 8th chapter 18, but before that,
18th अध्याय में आएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले
the first occurrence of the word ecclesia or church.
और पहली बार जब ecclesia शब्द का कहां इस्तेमाल किया गया है?
Where is it?
कहां लिखा गया है?
18. Prior to that, before that,
18:20 उससे पहले
the most important words, the fundamental words. 16:18.
मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन.
The Lord said, I will build my church.
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेरी कलीसिया का निर्माण करूंगा.
That's the first reference about church in New Testament.
और हम देखते हैं कि पहली बार जो है नए नियम में इस प्रकार से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
The Lord said, I will build.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेरी कलीसिया का निर्माण करूंगा.
What does it mean?
इसका अर्थ क्या है?
What does it mean? I will build my church.
मैं मेरी कलीसिया का निर्माण करूंगा, इसका अर्थ क्या है?
The simple meaning.
साधारण सा अर्थ है.
Yeah, the church was not there in existence by the time the Lord made this wonderful declaration.
और जब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अद्भुत यह घोषणा करी उस वक्त जो है कलीसिया नहीं थी.
Am I right?
मैं सही हूं?
It's in future tense.
और ये जो है वो भविष्य काल में है.
I will build. That means I am going to build.
मैं बनाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं बनाने जा रहा हूं.
The old system is there. The Levitical system is there. The temple is there.
और पुराना जो जितने भी बातें थी, जो मंदिर था और याजक लोग थे, वो सब थे.
But it is going to be taken away from the way. It is going to be taken out.
और वो जो है जगह से उसको हटा दिया जाएगा.
I will build a new system, a new entity. That is a church.
और मैं एक नया बनाऊंगा, एक नई बात बनाऊंगा जो कि कलीसिया है.
So by the time the Lord made this statement in Matthew 16:18, the church was not at all in existence.
और मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 वचन में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उस वक्त कलीसिया वहां पर मौजूद नहीं थी.
I will build.
और इसीलिए उसने कहा कि मैं बनाऊंगा.
That's the first evidence.
और ये पहली बात हमें देखने को मिलती है.
Come on, another.
दूसरी बात.
That itself is enough.
और यही एक बात जो है इस हमारी इस पूरी शंका के लिए काफी है.
But to prove it more,
फिर से साबित और करने के लिए.
Anything else?
इसके अलावा और कुछ संदर्भ?
In Ephesians 3,
Ephesians किताब उसका पत्री उसका तीसरा अध्याय
verses 5 and 6, Paul says that the Lord has given me, revealed a mystery unto me.
और अपोस्टल पॉल कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक रहस्य का खुलासा मेरे लिए किया है.
Now what's the meaning of the word mystery?
और रहस्य का शब्द का अर्थ क्या है?
Mystery.
रहस्य.
Yeah, the deep things that were not revealed in the past, but revealed later by the holy apostles and prophets.
और हम देखते हैं जो गहरी बातें जो है पहले जिसका खुलासा नहीं किया गया था उस बातों को जो है बाद में प्रेरितों ने प्रेरितों को इस प्रकार से उसका खुलासा मिला.
Mystery is not something mysterious all the days, but it was hidden. It was not revealed in a time past, but revealed later by the apostles and prophets.
और हम देखते हैं रहस्य जो है रहस्यमय बातें नहीं थी लेकिन ऐसी बातें जो कि छुपी हुई थी उनको अपोस्टल प्रेरितों को इस प्रकार से रहस्य का खुलासा उनको परमेश्वर ने दिया.
अच्छा जो है मिस्टरी इट वॉज नॉट रिवील्ड इन द पास्ट.
और हम देखते हैं कलीसिया जो है एक रहस्य था और भूतकाल में उसे नहीं बताया गया था.
इट वॉज रिवील्ड मोस्टली बाई अपोस्टल पॉल.
और ये जो है इसका प्रकटीकरण जो है ज्यादातर हम देखते हैं अपोस्टल पॉल ने किया.
द टीचिंग्स अबाउट चर्च वॉज रिवील्ड बाई अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स.
और हम देखते हैं किस प्रकार से भविष्यवक्ताओं ने और प्रेरित लोग ने इसका खुलासा किया.
Apostles were not there in the Old Testament.
और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित लोग नहीं थे.
They were chosen only by the Lord.
और प्रभु यीशु मसीह ने ही उनका चुनाव किया था.
So that is the second proof to prove that church was not there in Old Testament and church is not a continuation of Old Testament.
और ये दूसरी बात साबित करता है कि जो पुराने नियम में चर्च नहीं था और चर्च जो था जो पुराने नियम का जो है इस प्रकार से जो पुराने नियम से आया नहीं है.
Then third evidence.
और तीसरी बात जो है
इन एक्ट्स 20 वर्सेस 26 टू 28
और फिर तो काम 20वां अध्याय 26 से लेकर 28 वचन तक.
पॉल सेज दैट द लॉर्ड जीसस परचेस्ड द चर्च बाय हिज ओन ब्लड.
और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही खून से कलीसिया को खरीदा है.
द चर्च वॉज अ परचेस्ड प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड बाय हिज ओन ब्लड.
और प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही खून से खरीदी हुई एक एक जगह एक बात की है.
सो द चर्च वॉज नॉट देयर टिल द डेथ ऑफ क्राइस्ट.
और प्रभु यीशु मसीह के मरने तक जो है हम देखते हैं कलीसिया तब तक नहीं थी.
इन अदर वर्ड्स क्राइस्ट हैड टू डाई टू एस्टैब्लिश चर्च.
प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा एक कलीसिया के निर्माण के लिए.
एंड फोर्थली
चौथी बात
इन एफिशियंस 2:22
एफिशियंस किताब उसका दूसरा अध्याय 22वां वचन.
सॉरी एफिशियंस 1:22
एफिशियंस किताब पहला अध्याय उसका 22वां वचन.
पॉल सेज दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज मेड द हेड ऑफ द चर्च.
और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का मस्तक बनाया.
वेन ही वॉज मेड द चर्च ऑफ गॉड.
जब उसने कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया को बनाया.
वेन वॉज ही मेड द हेड ऑफ द चर्च.
और कब उसे इस प्रकार से कलीसिया का मस्तक बनाया.
आफ्टर डेथ
मरने के बाद.
आफ्टर हिज बरियल
उसके दफनाने के बाद.
आफ्टर हिज रिसरेक्शन
उसके पुनरुत्थान के बाद.
इवन आफ्टर हिज रिसरेक्शन आफ्टर हिज असेंशन
और उसके स्वर्गारोहण के बाद.
सो क्राइस्ट हैड टू डाई एंड असेंड इनटू हेवन.
और प्रभु यीशु मसीह को मरना था और उसके बाद उसे स्वर्गारोहित होना था.
ही हैड टू सिट एट द राइट हैंड ऑफ द फादर टू बिकम द हेड ऑफ द चर्च.
और उसे परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ बैठना पड़ा ताकि वो कलीसिया का मस्तक बने.
सो आवर पॉइंट इज दैट टिल असेंशन The church could not have been established.
और मेरा हमारा मुद्दा यह है कि स्वर्गारोहण तक जो है इस प्रकार से कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ था.
You're following me?
क्या आप मुझे समझ रहे हैं?
Matthew 16:18 first reference, first proof.
और मत्ती का सच्ची सुषमाचार उसका 16 अध्याय 18 वचन में हमें पहला सबूत मिलता है.
Then church is a New Testament revealed mystery and not in Old Testament.
और हम पढ़ते हैं कि चर्च जो कलीसिया जो है वो नए नियम में इसका रहस्य का खुलासा किया था पुराने नियम में नहीं.
And the church is the purchased property of the Lord Jesus Christ by his blood.
और प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त से खरीदी हुई ये जो है कलीसिया को खरीदा था.
Christ had to die and resurrect and ascend into heaven so that he will become the head of the church.
प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा और उसके बाद वो स्वर्गारोहण हुआ और वो तब उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का मस्तक बना.
Then fifthly.
और पांचवी बात.
The Holy Spirit had to come down into the world.
और पवित्र आत्मा को इस प्रकार से स्वर्ग से उतर कर धरती पर आना पड़ा.
Why?
क्यों?
To give birth.
और इस प्रकार से कलीसिया के जन्म के लिए.
Okay. Anything else?
इसके अलावा.
Now who is involved in the building up of the church?
और कौन इस प्रकार से कलीसिया के निर्माण में लगा हुआ है.
Who is giving spiritual gifts to the members of the church?
और कलीसिया के सदस्यों को कौन इस प्रकार से आत्मिक वरदान देता है.
It is the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
1 Corinthians 12:11
और पहला कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय 11 वचन.
The Holy Spirit divides or distributes gifts to many as he likes.
और किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है विभाजन करती है वरदानों का और लोगों को देती है.
So the work of the church is carried out by the spiritual gifts.
और हम देखते हैं किस प्रकार से कलीसिया के जितने भी जो काम है वो आत्मिक वरदानों के द्वारा जो है वो चलाया जाता है.
And these gifts are given by the Holy Spirit.
और ये वरदान जो है पवित्र आत्मा देता है.
If the Holy Spirit had to give this gift, he had to come down into the world.
अगर पवित्र आत्मा को ये वरदान देना है तो जरूरी है कि उसे इस संसार में आना है.
And again Paul says in Ephesians 2:22 that the work of the church is being carried out by the Holy Spirit.
और हम पढ़ते हैं एफिसियों किताब उसका दूसरा अध्याय 22वें वचन में कि पर कलीसिया का जितना भी काम है वो पवित्र आत्मा जो है वो करता है.
And one more evidence.
और इसके अलावा एक और बात जो प्रमाणित करता है.
The Lord made a wonderful statement in John chapter 10 and verse 16.
और यूहन्ना का सुसमाचार 10वें अध्याय 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा.
There he makes a distinction between Israel and the church of God.
वहां पर प्रभु यीशु मसीह इज़राइल और परमेश्वर की जो कलीसिया उसमें एक फर्क जो है प्रभु यीशु मसीह बताते हैं.
Now one of you may kindly read.
आप में से कोई एक पढ़े.
The distinction between Israel and the church.
इज़राइल और चर्च में क्या फर्क है.
Come on, don't waste time. John 10 and 16. Yeah, I have other sheep or I have other flock who do not belong to this fold. I have to take care of them.
और मेरी और भी भेड़ें हैं और उनको लाना जो है अवश्य है.
Here the flock is differentiated from the fold.
और हम देखते हैं किस प्रकार से जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि भेड़ को झुंड से अलग किया गया है.
The sheep and the fold.
भेड़ और झुंड.
Flock and fold.
Yeah, sheep.
So, yeah, sheep and the fold.
भेड़ और जो झुंड है.
What's the difference between these two?
इन दोनों में क्या फर्क है.
Flock and fold or sheep and fold.
और भेड़ और झुंड में इन दोनों में क्या फर्क है.
Same time, same or different?
क्या ये दोनों एक ही है अलग अलग इसमें फर्क है.
सेम. शीप इज सिंगुलर फोल्ड इज
शीप. भेड़ जो है एक वचन है और समूह जो है झुंड जो है वो बहुवचन है.
नाउ शीप एंड फ्लॉक सेम.
दोनों एक बात है.
फोल्ड इज डिफरेंट.
और झुंड जो है अलग है.
व्हाट इज फोल्ड.
झुंड क्या है.
It's an area where sheep is brought together.
और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भेड़ों को एकत्रित रखा जाता है.
It's a cattle shed.
और एक जानवर को रखने का स्थान है.
If sheep is not there,
अगर वहां पर भेड़ नहीं है,
then what's the significance of a fold?
तो उस स्थान का क्या अर्थ है, क्या महत्व है.
Now God elected a group of people, Israel. He considered them as sheep, or they went astray.
और हम देखते हैं परमेश्वर ने एक लोगों का चुनाव किया जो कि भेड़ के समान है, लेकिन वो भेड़ जो है तितर बितर हो गई.
सो पीपल ऑफ इसराइल दैट वॉज अ फोल्ड विदाउट शीप.
और हम देखते हैं कि इसराइल जो है एक ऐसा झुंड था भेड़ों के बगैर.
यू फॉलोइंग मी.
क्या आप समझ रहे हैं.
द पीपल ऑफ इसराइल इट वॉज ओनली अ फोल्ड.
और इसराइल के लोग मात्र एक झुंड थे.
इट वॉज ओनली अ कैटल शेड.
एक इस प्रकार से जानवर रखने का स्थान मात्र था.
द शीप लेफ्ट ऑलरेडी.
और उसमें से भेड़ें जो है निकल गई थी.
They did not obey the Lord.
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं किया.
So Israel had their own systems, rules and regulations and activities of their religion.
और हम देखते हैं उनके धर्म के इसराइल के जो धर्म था उनकी अलग अलग कार्यवाही गतिविधियां वो करते थे.
They did not obey the Lord.
उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया.
So it became only a fold.
तो वो मात्र एक झुंड के समान बन गया.
The Lord said that I have another flock, another sheep.
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं.
And who are these sheep or flock?
और ये भेड़ और ये झुंड कौन है.
That's a church.
वो है कलीसिया.
It is the Lord who took care of the fold, and now he says that they belong to me, they are my people, but the flock is different from the fold.
और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये झुंड है वो मेरा है, और लेकिन ये भेड़ और जो झुंड है इन दोनों में फर्क है.
Am I right?
क्या मैं सही हूँ.
God, you are following me? Charlie? Okay. So Israel was a fold, but church is a sheep or a flock.
और हम देखते हैं कि इसराइल जो था एक झुंड था, लेकिन कलीसिया जो है एक भेड़ है.
So the flock is not the continuation of fold.
और हम देखते हैं कि झुंड जो है वो पुराने नियम की जो बात है वो नए नियम में उसका जो है निरंतर बात जारी नहीं है.
The fold became lifeless. और the flock is full of life.
और ये झुंड जो है वो उसका जीवन रहित हो गया, लेकिन जो भेड़ है उसमें जीवन हमें देखने को मिलता है.
So church is not a building as many people think.
और कलीसिया जो है या चर्च जो है एक इमारत नहीं है जिस प्रकार से लोग विश्वास करते हैं.
Church is not a continuation of old Israel as many people think.
और कई लोग जिस प्रकार से मानते हैं कि ये जो चर्च है वो पुराने नियम से इसराइल के जो बातें हैं वही वापस इस चर्च में आई है, ऐसा नहीं है.
It is more difficult thing.
और जो कठिन जो बात है.
The third thing, church is not the kingdom of God.
और कलीसिया जो है परमेश्वर चर्च जो है परमेश्वर का राज्य नहीं है.
Church is not the kingdom of God.
चर्च जो है या कलीसिया जो है परमेश्वर का राज्य नहीं है.
During these days, people confuse God's people by saying that church is the kingdom of God and the kingdom of heaven.
और कई लोग इस प्रकार से लोगों को बहकाते हैं कि ये कलीसिया जो चर्च जो है वो परमेश्वर का राज्य है और स्वर्ग का राज्य है.
So it's better to make the distinction clearly.
और इसीलिए इस बातों का अर्थ समझना या इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है.
Church has got its relation with the kingdom of God, but church is not the kingdom of God.
और कलीसिया या चर्च का जो है परमेश्वर के राज्य से संबंध है, लेकिन कलीसिया या चर्च जो है परमेश्वर का राज्य नहीं है.
What is the kingdom of God?
So परमेश्वर का राज्य क्या है?
Kingdom of God.
परमेश्वर का राज्य.
Very often we use this terminology, isn't it?
कई अक्सर हम जो है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.
Kingdom of God.
परमेश्वर का राज्य.
What is the kingdom of God?
परमेश्वर का राज्य क्या है?
Come on. Where God is sovereign.
जहां परमेश्वर सर्वोच्च है.
My question, where is he sovereign?
कहां पर वो सर्वोच्च है?
The answer is right.
जो उत्तर जो है वो सही है.
But specifically, where is he ruled?
और ये बताइए कि परमेश्वर का राज्य या कहां पर वो राज्य करता है?
Where does he rule and where is he sovereign?
वो कहां राज्य करता है, वो कहां पर सर्वोच्च है?
What is that? स्वर्ग, लाइफ ऑफ द बिलीवर, चर्च,
कलीसिया, चर्च.
या इट्स इन अस
हमारे अंदर.
Anything else?
इसके अलावा और कोई विचार?
Think seriously.
बहुत ही गंभीरता से सोचिए.
Now I want to bring before you, what is a church?
मैं आपको
what is the kingdom of God?
मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य आखिर क्या है.
Now for the first time, the kingdom was prophesied in Daniel 2 and verse 44.
और पहली बार जो है राज्य का इस प्रकार से दानियल किताब उसका दूसरा अध्याय और 44 वचन में इसका जिक्र किया गया. और यहाँ पर कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी की गई दानियल किताब उसका दूसरा अध्याय 44 वचन में.
That God made it clear that the Almighty is going to rule, he is going to establish the kingdom.
और वहां पर बताया गया कि किस प्रकार से महान परमेश्वर जो है वो अपनी राज्य की स्थापना करेगा.
That's going to be an everlasting kingdom.
और वो राज्य जो होगा अनंत काल का राज्य होगा.
The human governments are going to be overthrown.
और जितने भी संसार की जितनी भी सत्ताएं हैं उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा.
And the Almighty God is going to establish his kingdom on the earth.
और महान परमेश्वर जो है अपने राज्य की स्थापना धरती पर या पृथ्वी पर करेगा.
That means by the time of Daniel, the kingdom of God was not established on the earth.
और इसका मतलब यह है कि दानियल के समय में परमेश्वर का राज्य की स्थापना जो है संसार में नहीं हुई थी.
Am I right?
क्या मैं सही हूँ?
It says that the Lord is going to establish his kingdom in the future.
और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है भविष्य काल में अपने राज्य की स्थापना करेगा.
So the kingdom of God was prophesied, foretold by Daniel.
और हम देखते हैं दानियल ने परमेश्वर के राज्य के घोषणा के बारे में भविष्यवाणी करी.
And secondly,
दूसरी बात,
now by the coming of the Lord Jesus,
प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद,
what was his first message?
उसका पहला संदेश क्या था?
Christ began to preach about the kingdom of God.
प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया.
Am I right?
क्या मैं सही हूँ?
Read Mark.
मरकुस का सुसमाचार.
Chapter 1 and verse 15.
पहला अध्याय उसका 15 वचन.
Mark 1:15.
मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 15 वचन.
Mark 1:15.
और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो.
Yeah, the time is fulfilled. The time is at hand.
समय पूरा हुआ है, समय निकट है.
God's time is fulfilled. The plan of God is fulfilled.
परमेश्वर की योजना संपूर्ण हुई है.
Now the Lord said that the kingdom of God is at hand. It's very near.
और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है.
द किंगडम वॉज प्रोफेसाइड अर्लियर बाय डैनियल.
डैनियल जिसने इसके बारे में घोषणा करी थी, भविष्यवाणी करी थी.
नाउ द लॉर्ड सेड दैट टाइम इज फुलफिल्ड.
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि समय संपूर्ण हुआ है.
टाइम ऑफ व्हाट?
कौन सा समय?
ऑफ व्हाट?
क्या समय?
ऑफ द अराइवल ऑफ द किंगडम.
और राज्य की स्थापना या राज्य की आगमन का समय पूरा हो गया है.
Now by the coming of the Lord, by His public ministry, the kingdom was established on earth.
और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सेविकाई के द्वारा जो है वो परमेश्वर का राज्य की स्थापना हुई.
Though it is just not a material kingdom, but a spiritual kingdom.
और वो एक भौतिक राज्य नहीं बल्कि एक आत्मिक राज्य की स्थापना की.
He was born as a king.
वो राजा के रूप में उन्होंने जन्म दिया.
And by his ministry, he established his kingdom.
और उनकी सेवकाई के द्वारा उन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी.
Now Matthew 15:28.
मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 28
makes it more elaborate.
और ज्यादा विवरण हमें देखने को मिलता है.
Matthew 15:28.
मत्ती का सुसमाचार 15 और उसका 28 वचन.
Come on, read fast. Matthew 15:28.
Is it? Yeah, is it? It is.
Sorry. The kingdom is arrived. 16, okay? Now, there is another verse. I will tell it tomorrow.
एक और वचन है, मैं आपको कल बताऊंगा.
Not 28. Yeah, I'll tell you tomorrow. There the Lord said that the kingdom has already arrived. Kingdom is arrived.
और वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है.
And the fourth reference is Luke 17:20-21.
लुका सुसमाचार 17 अध्याय 20 और 21 वचन में.
There the Lord said that the kingdom is among you.
और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है. 17 का 20 और 21. फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य का आगमन दृश्य रूप में नहीं होगा, न लोग कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है.
प्रीवियस वर्स इज मत्ती 12:28.
मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 28वां वचन.
12:28. Yeah, by the casting out of evil spirit, the Lord said that the kingdom has already come.
और पवित्र किस प्रकार से दुष्टात्माओं को निकाला गया, प्रभु यीशु मसीह कहा कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है.
There was a conflict between the kingdom of Satan and the King Lord Jesus himself.
और हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान की सत्ता और प्रभु यीशु मसीह जो कि राजा था उनके बीच में जो संघर्ष था.
By the casting out of evil spirit from a man, the Lord said that the kingdom of God has already come.
और जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्माओं को निकाला गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है आ चुका है.
And how do we know that the kingdom has already come?
हम कैसे जान सकते हैं कि राज्य है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है?
Here is the King Lord Jesus.
यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो कि राजा है.
And he rules in the heart of people.
और वो लोगों के हृदय में राज्य करता है.
So the kingdom has already come.
तो हम देखते हैं कि वो राज्य आ चुका है.
And in Luke 17 it says that the kingdom of God is among you.
और लूक के सुसमाचार 20:17 अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य जो है तुम्हारे बीच में है.
So we may say that by the coming of the Lord Jesus Christ the kingdom was established.
हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद प्रभु परमेश्वर के राज्य की स्थापना हुई.
And that continues throughout the church age.
और वो कलीसिया के युग में आज भी वो काम जो है जारी है.
And then it will continue in the 1000-year millennium.
और हजार साल का जो मिलेनियम का जो राज्य होगा, समय होगा, उसमें वो जारी रहेगा.
And eternity is again considered to be the kingdom of God in 2 Peter chapter 2 and verse 11.
और दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 11वां वचन में हम पढ़ते हैं कि जो अनंत काल जो है वो जो है परमेश्वर का राज्य होगा.
You will have entry into the eternal kingdom of God.
तुम्हें इस प्रकार से प्रवेश मिलेगा परमेश्वर के राज्य में.
So the kingdom of God consists of a long period.
और हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य जो है उसका जो काल है बहुत लंबा काल है.
It started by the coming of the king into the world.
और जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में आए.
And it continues all through the church age.
और वो पूरे कलीसिया के युग में हम देखते हैं.
And again the kingdom will come in its full measure by the Lord Jesus Christ ruling the earth for 1000 years.
और जब प्रभु यीशु मसीह हजार साल तक जो है इस संसार में राज्य करेंगे तो पूरी तरह से हम परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे.
And again it will continue all through eternity.
और पूरे अनंत काल में परमेश्वर का राज्य को हम देखेंगे किस प्रकार से वो राज्य.
So kingdom of God consists of a very long period.
तो परमेश्वर का राज्य का जो काल है वो बहुत बड़ा काल है.
And where are we now?
आज हम किस काल में हैं, कहां पर हैं?
Where are we?
कहां पर हैं हम?
We are in the church.
हम कलीसिया में हैं.
At the same time we can say that we are in the kingdom of God.
और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं.
Because the Lord as a king he is reigning in our hearts.
क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में हमारे हृदय में वास कर रहा है और राज्य कर रहा है.
So in the public ministry of the Lord Jesus Christ there were people who accepted him as king.
और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो सार्वजनिक सेवा थी उसमें लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार किया.
And he ruled in their hearts.
और प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय में राज्य किया.
And the hearts of people who obeyed him that was a kingdom of God.
और जिन लोगों ने उसको स्वीकार किया वो उनके लिए वो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का राज्य वहां पर देखने को मिलता है.
द फिजिकल द मटेरियल किंगडम हैज नॉट कम इन द प्रेजेंट टाइम येट दोस हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट देयर हार्ट्स आर टर्न्ड टू बी द किंगडम ऑफ गॉड.
हम देखते हैं भौतिक तौर पर ये राज्य नहीं आया लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उनके हृदय के अंदर जो है परमेश्वर का राज्य है.
एंड द किंगडम इज गोइंग टू कम इन इट्स फुल मेजर बाय द मिलेनियम.
और हम देखते हैं हजार साल का जो राज्य होगा उसमें पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य को हमें देखने का और अनुभव करने का मौका मिलेगा.
व्हाई आई एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर दैट द चर्च इज इन द किंगडम ऑफ गॉड बट चर्च इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड.
और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर के राज्य में है लेकिन कलीसिया जो है परमेश्वर का राज्य नहीं है.
चर्च इज अ डिफरेंट एंटिटी.
और चर्च जो कलीसिया जो है बिल्कुल अलग उसका अस्तित्व है.
इट्स वेरी यूनिक.
और ये बहुत ही अद्वितीय है.
It's a part of the kingdom of God, but church is not the kingdom itself.
और कलीसिया जो है परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा है लेकिन परमेश्वर का राज्य नहीं है.
You got my point?
आपको समझ में आया?
Not my point, but the point of the scripture.
मेरा मुद्दा नहीं बल्कि जो परमेश्वर के वचन में बताया गया है.
So clear?
यह आपके लिए साफ है?
Come on, say either yes or no.
हाँ या ना कहिए.
Yes? Is it clear?
यह आपको बिल्कुल समझ में आया, साफ है?
Does it make sense?
क्या इससे कुछ अर्थ निकल रहा है?
Or not? Okay. Now there are other people who say that the church is the kingdom of heaven.
और कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, मानते हैं कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है.
Kingdom of God and kingdom of heaven. These two terminologies are used in the Gospels.
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य.
But to our surprise, the kingdom of heaven is found only in Matthew.
और हमारे आश्चर्य की बात यह है कि स्वर्ग का राज्य के बारे में जो जिक्र है वो सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में ही है.
And kingdom of heaven doesn't come in Mark, Luke and John.
और मरकुस के सुसमाचार, लूक के सुसमाचार और यूहन्ना के सुसमाचार में उसका कोई जिक्र नहीं है.
Though Matthew uses both kingdom of heaven and kingdom of God, but kingdom of heaven is special to Matthew.
और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में मत्ती जो है वो परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है, बोलता है, लेकिन स्वर्ग का राज्य जो है मात्र मत्ती के सुसमाचार में देखने को मिलता है.
किंगडम ऑफ हेवन कम्स 32 टाइम्स.
और मत्ती के सुसमाचार में परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य 32 बार उसका जिक्र किया गया है.
32 टाइम्स,
32 बार.
If that's the case, what's the difference between kingdom of heaven and kingdom of God?
अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर के राज्य में और स्वर्ग के राज्य में क्या फर्क है?
So at the beginning, I want to make it very clear that the gospel writers they use these two words interchangeably.
और हम देखते हैं कि जो सुसमाचार लिखने वाले लोगों ने इन दोनों शब्दों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है.
Kingdom of God and kingdom of heaven are used interchangeably.
एक के बदले में दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य.
But true to its sense, kingdom of heaven is particular and unique to Matthew.
और हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती का जो लेखक है उसके लिए परमेश्वर का जो स्वर्ग का जो राज्य है बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही अद्भुत था.
If that's the case, what's the kingdom of heaven different from kingdom of God?
अगर ये बात है तो परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य में क्या फर्क है?
Any difference?
कोई फर्क है?
There is a difference.
उसमें दोनों में फर्क है.
Kingdom of God consists in a time of church.
परमेश्वर का राज्य जो है वो कलीसिया के युग में हमें देखने को मिलता है.
Kingdom of heaven is a time of the age of church.
और परमेश्वर का राज्य नहीं बल्कि ये जो स्वर्ग का राज्य जो है मात्र कलीसिया के युग में है.
What is kingdom of heaven?
स्वर्ग का राज्य क्या है?
What is kingdom of God?
परमेश्वर का राज्य क्या है?
Both are different.
दोनों अलग हैं.
Kingdom of God is a long period of time.
और परमेश्वर का राज्य जो है एक लंबा अंतराल है.
It started by the coming of the king into the world till eternity.
और हम देखते हैं जो राजा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह राजा बन के संसार में आया और अनंत काल तक.
But kingdom of heaven is a limited time.
और लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग का राज्य जो है उसका अंतराल जो है वो सीमित है.
एंड दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द चर्च एज.
और उसका जो ताल्लुक जो है कलीसिया के युग में है.
इट इज दिस टाइम वेयर पीपल कॉल अपॉन हेवन.
और ये ऐसा समय है जहां पर लोग जो है स्वर्ग की ओर पुकार कर कहते हैं.
That's why Matthew alone speaks about kingdom of heaven, whereas other gospel writers they do not speak about kingdom of heaven at all.
और इसीलिए हम देखते हैं मत्ती मात्र जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखता है, बाकी जितने भी सुसमाचार के लेखक हैं वो नहीं लिखते.
You know why?
आपको मालूम है क्या क्यों?
Which are the gospel writers who use the word church?
और कौन से इस प्रकार से गॉस्पल या सुसमाचार के लेखक हैं जिन्होंने चर्च का शब्द का इस्तेमाल किया?
Matthew, Mark, Luke, John, there are four gospels. And where all we find the word church?
और चार लेखक हैं और कहां पर हमें ये चर्च शब्दों का इस्तेमाल किन किन लोगों ने कहां कहां पर किया गया है?
Well, not hearing. Matthew and Mark.
Matthew और मरकुस.
Anywhere else?
इसके अलावा और कोई?
Only in Matthew.
मात्र मत्ती के सुसमाचार में.
द वर्ड चर्च डजंट कम इन मार्क लूक एंड जॉन.
और चर्च के शब्द का इस्तेमाल जो है मरकुस लूक और योहन्ना में नहीं है.
द आइडिया इज देयर, द डॉक्ट्रिन इज देयर, द टीचिंग इज देयर.
और वहां पर विचार है और सिद्धांत है और शिक्षाएं हैं.
बट द वर्ड एक्लीसिया, द वर्ड चर्च इज नॉट फाउंड इन मार्क लूक एंड जॉन.
और लेकिन एक्लीसिया शब्द का इस्तेमाल जो है इस शब्द जो है हमें मरकुस के सुसमाचार, योहन्ना के सुसमाचार और लूक के सुसमाचार में नहीं मिलता.
एंड इवन इन मत्ती द वर्ड चर्च कम्स ओनली इन 16 एंड 18 चैप्टर्स.
और हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में 16 और 18 अध्याय में ही ये कलीसिया के शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
सो द टीचिंग अबाउट चर्च इज यूनिक टू मत्ती.
और मत्ती के बारे में हम कह सकते हैं कि जो कलीसिया की जो शिक्षा है उसके लिए बहुत ही अद्वितीय थी.
सो द गॉस्पल राइटर मत्ती हु स्पीक्स अबाउट चर्च, ही अगेन स्पीक्स अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन.
और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में जो चर्च के बारे में मत्ती ने लिखा है वही लेखक जो है परमेश्वर या स्वर्ग के राज्य के बारे में भी लिखता है.
सो द किंगडम ऑफ हेवन इज अ लिमिटेड टाइम, द टाइम ऑफ चर्च.
और देखते हम कैसे कहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो राज्य है, जो स्वर्ग का जो राज्य है बहुत ही सीमित है और वो कलीसिया के युग तक ही सीमित है.
इट स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट.
वो पेंटेकोस्ट के दिन में इसकी शुरुआत हुई.
इट विल कम टू इट्स कंसुमेशन बाय द सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट.
और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये समाप्त हो जाएगा.
नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस एज,
और इस युग में
there are people who call upon heaven.
और इस युग में इस प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे जो स्वर्ग की ओर देखकर स्वर्ग पुकार करेंगे.
And among these people there are genuine Christians and there are professing Christians.
और ऐसे इस युग में हम देखते हैं कि बहुत ही सच्चे विश्वासी भी हैं और ऐसे लोग हैं जो कि नामधारी विश्वासी हैं.
In another sense, making it very clear, very simple, the church, the kingdom of heaven has got its inner sphere and outer sphere.
हम देख कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो परमेश्वर का स्वर्ग का जो राज्य है उसका एक इनर स्फीयर है या कि एक आंतरिक क्षेत्र है और एक बाहरी क्षेत्र भी है.
Now the world sees the kingdom of heaven in the Christendom, the Christian world.
और मसीह जगत में लोग जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को देखते हैं.
This is the inner circle.
यह अंदर का क्षेत्र है.
Inner sphere. This is the outer sphere.
अंदर का क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र हम देखते हैं.
Now in the inner sphere there are people who are born again.
और जो अंदर का क्षेत्र है वहां पर लोग हैं जिनका नए सिरे से या उद्धार पाए हुए लोग हैं.
द पीपल हु आर जेन्युइन क्रिश्चियंस, पोसेसिंग क्रिश्चियंस, और रियली कन्वर्टेड पीपल,
जो ऐसे सच्चे विश्वासी जिनका सच्चे हृदय से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है.
दे कॉल गॉड हेवनली फादर.
जो परमेश्वर को स्वर्गीय पिता कह के पुकारते हैं.
एंड दे आर द रियल मेंबर्स ऑफ किंगडम ऑफ हेवन.
वो इस प्रकार से स्वर्ग के राज्य के सचमुच एक नागरिक या सदस्य हैं.
नाउ अलोंग विद द पीपल ऑफ द इनर स्फीयर देयर आर मेनी अदर्स हु प्रोफेस, who claim to be Christians, and we generally call them nominal Christians.
और इसके बाद हम देखते हैं बाहरी क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बताते हैं कि वो मसीह है, जिनको हम कहते हैं कि नामधारी मसीह.
They are churchgoers.
वो इस प्रकार से कलीसिया में जाते हैं
बट दे डू नॉट हैव क्राइस्ट इन देयर हार्ट्स
लेकिन उनके हृदय में यीशु मसीह नहीं है
दे आर इन द आउटर स्फीयर ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन
वो बाहरी तौर पर बाहरी क्षेत्र में परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बाहरी क्षेत्र में है
नाउ द वर्ल्ड लुक्स इन टू क्रिश्चियनिटी
लोग संसार जो है मसीह जगत में देखते हैं
एंड दे से दैट यू आर क्रिश्चियंस दे आर क्रिश्चियंस ऑल आर क्रिश्चियंस
और वो कहते हैं कि आप भी मसीह हैं वो भी मनुष्य मसीह हैं सब लोग मसीह हैं
एंड सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम
और उनमें और आप में फर्क क्या है
एंड वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पीपल हु क्लेम टू बी इन द किंगडम ऑफ हेवन
और हमें इस प्रकार से फर्क बताना चाहते हैं कि बताना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो स्वर्ग के राज्य में हैं
सो द टू जेन्युइन मेंबर्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन इज ओनली द बॉर्न अगेन ग्रुप ऑफ पीपल
तो जो स्वर्ग के राज्य के जो सचमुच जो सच्चे सदस्य और सच्चे नागरिक है वो मात्र है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है
दे आर द मेंबर्स ऑफ द चर्च
और वो कलीसिया के सदस्य है
There is another group of people who are larger in number.
और इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरे समुदाय के समूह के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है
they again claim to be Christians.
वो इस प्रकार से दावा करते हैं कि वो भी मसीह हैं.
And they also call Heavenly Father.
वो भी इस प्रकार से स्वर्गीय पिता कहे के पुकारते हैं
But they have no relation with the Heavenly Father.
लेकिन उनका परमेश्वर से या स्वर्गीय पिता से कोई भी रिश्ता नाता
नहीं है. The world looks them as a part of the kingdom of heaven. But truly speaking, they are not the part of kingdom of heaven at all.
लोग जो है उनको भी इस प्रकार से स्वर्गीय राज्य के सदस्य के रूप में देखते हैं लेकिन सचमुच सच पूछा जाए तो वो स्वर्ग के नागरिक या सदस्य नहीं है
इफ दीज आर क्लियर
अगर ये सारी बातें
समझ वेयर आर वी
तो हम कहाँ हैं
वी आर द चर्च ऑफ गॉड
हम परमेश्वर के कलीसिया में हैं
वी आर द किंगडम ऑफ गॉड
हम परमेश्वर के राज्य में हैं
एंड वी आर द किंगडम ऑफ हेवन
हम जो है स्वर्ग के राज्य में हैं
एम आई राइट
क्या मैं सही हूँ
इज इट क्लियर
ये बिल्कुल साफ है
टेल मी वेदर क्लियर और नॉट
आप बताइए बिल्कुल आपको साफ समझ में आया या नहीं आया
अगेन कंफ्यूज ना नो एंगल क्लियर बिकॉज दीज आर सम ऑफ द टीचिंग्स वेयर इवन आवर पीपल आवर टीचर्स दे मेक कंफ्यूज्ड
और ये ऐसी बातें हैं ऐसी शिक्षाएं जो कि हमारे शिक्षक भी कई बार इसमें फंस जाते हैं और समझने में दिक्कत हो जाती है
द थिंग्स आर मेड वेरी क्लियर इन द बाइबल
लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र में ये सारी बातें बिल्कुल साफ की गई है
किंगडम ऑफ गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम किंगडम ऑफ हेवन
परमेश्वर का राज्य जो है स्वर्गीय राज्य से बिल्कुल अलग है
चर्च इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड बट इट्स अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड
और जो कलीसिया जो है वो परमेश्वर का राज्य नहीं है बल्कि परमेश्वर का राज्य का एक हिस्सा है
द चर्च एज इज कंसिडर्ड टू बी द एज ऑफ किंगडम ऑफ हेवन
और परमेश्वर जो कलीसिया का जो युग है वो स्वर्ग के राज्य का एक अंग है
एंड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम देयर आर प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस एंड प्रोसेसिंग क्रिश्चियंस
और इस युग में हम देखते हैं ऐसे सच्चे विश्वासी और नामधारी विश्वासी
नाउ अनदर वंडरफुल थिंग इन मैथ्यू चैप्टर 13 We read about seven parables of the kingdom of heaven.
और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय में सात दृष्टांत जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं
Seven parables.
सात ऐसे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
Started by saying that the Lord left the home and he sat by the sea.
और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह घर छोड़कर वो समुद्र के किनारे बैठते हैं
Now which house did he leave?
कौन सा घर उसने छोड़ा
He left the house of Israel.
उसने इज़राइल के घर को छोड़ दिया
He came to the seaside.
और वो समुद्र किनारे बैठ गया
The sea speaks about the Gentile world.
और ये समुद्र जो है अन्य जाति के लोग को दर्शाता है
Now God's dealing with the people of Israel has come to its end.
और प्रभु यीशु मसीह का इज़राइल के साथ जो बातचीत थी या जो उसके साथ जो संबंध था वो खत्म हो गया
The Lord is going to establish the kingdom of heaven or the church.
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग के राज्य की स्थापना जो कि कलीसिया उसकी स्थापना करने जा रहे हैं
And then he started speaking about the seven parables of the kingdom of heaven.
और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सात दृष्टांत जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं
And now for a personal study, may I give an introduction to this subject.
और इस विषय का मैं परिचय देना चाहता हूँ
We can easily compare the seven parables of Matthew chapter 13 with the seven churches of Revelation chapter 2 and 3.
और हम प्रकाशित वाक्य में जो सात कलीसिया के बारे में बताया गया उसकी तुलनात्मक तुलना जो है हम इस सात दृष्टांतों से कर सकते हैं
Now the first parable corresponds with the message to the church at Ephesus.
और एफेसस की कलीसिया में जो संदेश दिया वो पहला जो दृष्टांत था उससे इसका ताल्लुक है
And the second parable is exactly corresponds with the second church.
और दूसरा जो दृष्टांत था उसका जो संबंध है हम देखने को मिलता है कि जो दूसरी कलीसिया है
The church at Smyrna.
और स्मरना की जो मंडली है
And the third parable exactly corresponds with the church at Pergamos, third church.
Pergamos की जो तीसरी मंडली थी उसका तीसरे दृष्टांत से बिल्कुल सीधा ताल्लुक है
And the fourth parable exactly corresponds with the church, the fourth church.
और चौथा जो दृष्टांत था वो चौथी मंडली से उसका ताल्लुक है
The church at Thyatira.
और Thyatira की जो मंडली थी
And the fifth church exactly corresponds with the church at Sardis.
और सार्डिस में जो पांचवी मंडली थी उसका पांचवें दृष्टांत से ताल्लुक है.
एंड सिक्स्थ पैराबल करस्पॉन्ड्स विद द सिक्स्थ चर्च, दैट इज द चर्च एट फिलाडेल्फिया.
और फिलाडेल्फिया की जो छठवीं मंडली थी उसका छठवें दृष्टांत से ताल्लुक है.
एंड सेवंथ पैराबल करस्पॉन्ड्स विद द सेवंथ चर्च लाओदिकिया.
और लाओदिकिया की जो सातवीं मंडली है वो उसका ताल्लुक जो है सातवें दृष्टांत से है.
व्हाई आई वांट टू मेक दिस कंपैरिजन,
मैं इन बात का क्यों तुलना करना चाहता हूं,
बिकॉज़ द लॉर्ड बीइंग द ऑल नोइंग गॉड, ही न्यू इन एडवांस How the church age is going to be.
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कि सब कुछ जानने वाला सर्व ज्ञानी था, उसे मालूम था कि जो कलीसिया का युग जो है वो कैसा होगा.
The whole church age is divided into seven periods.
हम देखते हैं सारा समूचा मसीह कलीसिया का जो युग है उसको सात काल में बांटा गया है.
Now, where are we now?
हम कौन से युग में है, कहां पर हैं?
We are in the period of the seventh church.
हम जो है सातवें कलीसिया के युग में हैं.
We are in the Laodicean period.
हम जो है लाओदिकिया के युग में हैं.
Where the Christendom, the Christian world has become lukewarm.
हम देखते हैं कि किस प्रकार से मसीह जगत जो है नरम गरम हो गया है.
The kingdom of heaven.
परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य.
The church age.
जो कलीसिया का जो युग है.
किंगडम ऑफ हेवन इज डिफरेंट फ्रॉम द चर्च.
और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो राज्य है वो कलीसिया से बिल्कुल अलग है.
इफ चर्च इज नॉट दिस एंड दैट,
अगर कलीसिया ये और वो नहीं है,
देन व्हाट इज चर्च,
तो फिर कलीसिया क्या है.
एर्लियर आई मेड इट क्लियर, चर्च इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड आउट फॉर गॉड.
और चर्च या कलीसिया इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको अलग किया है और जिनको बुलाया है.
Now the first reference to it is in Matthew chapter 16 and verse 18.
और पहला संदर्भ जो है मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय और 18 वचन में हम देखते हैं.
There the Lord said that I will build my church on this rock.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा.
And the gates of hell will never prevail over it.
और नरक के जो फाटक है उसके ऊपर कभी विजय नहीं होंगे.
Now that church was started, it was established on the day of Pentecost.
और वो कलीसिया का की स्थापना जो है वो पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ.
एंड इट विल कम टू इट कंसुमेशन बाय रैप्चर.
और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब उसका समापन होगा.
एंड वी कॉल इट द यूनिवर्सल चर्च.
और हम इसे सार्वजनिक मंडली कहते हैं.
As Luke says in Luke in Acts chapter 2 verse 47, the Lord added only a certain group of people to the church. Who are they? They are the saved ones.
और हम देखते हैं किस प्रकार से प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 42 में पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु ने कुछ लोगों को किस प्रकार से चुनकर अलग किया और मंडली में जोड़ा.
The saved company of God's people.
और उद्धार पाए हुए ऐसे लोग, ऐसा समूह.
They are the called out ones.
और वो ऐसे लोग हैं जिनको बुलाया और अलग किया.
They are the bride of Christ.
और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है.
That's the church universal.
और वो जो है सांसारिक तौर पर जो कलीसिया जो है.
Whereas the second reference about church is in Matthew chapter 18. Verses 16 to 20.
और मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 16 से लेके 20वें वचन तक जो है हम दूसरा संदर्भ देखते हैं.
That is local church.
वो स्थानिक मंडली.
If two people have got any dispute.
और दो लोगों के बीच में कोई मतभेद है.
If my brother has sinned against me.
अगर मेरे भाई ने मेरे खिलाफ कोई पाप किया है.
I must go and talk to him.
मैं उसके पास जाना चाहिए मुझे. If, और उसे बातचीत करनी चाहिए.
If he is not willing to listen me.
अगर वो मेरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है.
Take two members of the church.
दो कलीसिया के सदस्यों को लेके जाइए.
एंड इफ दैट मैन इज नॉट विलिंग टू लिसन,
अगर उसके बावजूद भी वो सुनने के तैयार नहीं है,
टेल इट टू द चर्च,
तो कलीसिया में जाकर बताइए.
दैट्स अबाउट लोकल चर्च.
और वो एक स्थानिक मंडली का चित्र है.
दैट चर्च इज विजिबल.
और वो चत्र जो चर्च कलीसिया जो है वो दिखता है.
इट हैज गॉट ईयर्स टू हियर.
और उसके कान है सुनने के लिए.
एंड इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट अ सिनिंग ब्रदर.
और एक भाई जो पाप करता है उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है.
दैट्स द चर्च, द लोकल चर्च in different areas where God's people gather together to remember the Lord.
और हम देखते हैं कि एक स्थानिक मंडली जो कि लोग विभिन्न विभिन्न स्थानों में एकत्रित होते हैं और वहां पर प्रभु की याद करते हैं, प्रभुवोज करते हैं और उसकी आराधना स्तुति करते हैं.
Philippians 1:1 makes it clear what kind of a church is that local church.
और एक स्थानिक मंडली किस प्रकार की होती है वो फिलिपियों किताब उसका पहला अध्याय पहले वचन में साफ शब्दों में बताया गया है.
It must have believers or saints.
और वहां पर विश्वासियों को संत के रूप में कहा गया है.
इट मस्ट हैव बिशप्स और एल्डर्स.
और उसमें बिशप्स या प्राचीन लोग होने चाहिए.
इट मस्ट हैव डीकन्स.
और उसमें जवाबदार लोग होने चाहिए, डीकन्स होने चाहिए.
थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल कंप्राइज द लोकल चर्च.
और ये तीन समूह के लोग होने चाहिए, उसके बाद ही वो स्थानिक मंडली हो सकती
है. वेयर एवर गॉड्स पीपल गैदर इट विल नॉट बिकम चर्च.
और जहां कहीं भी परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं वो कलीसिया नहीं हो सकती.
वेयर गॉड्स पीपल गैदर टुगेदर रेगुलरली to remember the Lord and to witness him, that company of God's people is known as the local church.
और जहां पर परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं उसके गवाह हैं और उसकी गवाही देते हैं, ऐसे समूह के लोग जो है वो कलीसिया कहलाते हैं.
Wrong teaching is going on even among us. saying that wherever people gather, that is the church. It cannot be.
और हमारे बीच में भी इस प्रकार की गलत शिक्षा है कि जहाँ कहीं लोग एकत्रित होते हैं वो कलीसिया है, वो गलत है.
God willing, we will continue it.
परमेश्वर अगर हमारी सहायता करता है तो हम आगे जारी रखेंगे.
Thank you.